सुर्खियों में
नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध मिश्र। आज हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य क्षेत्र में वैश्विक शक्ति के रूप में उभरते भारत पर। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोक स्वास्थ्य के एक्सपर्ट और NTAGI के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा। डॉक्टर अरोड़ा, आकाशवाणी में आपका स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए सुबोध
जी। डॉक्टर अरोड़ा, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी प्रगति करते हुए खुद को वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में स्थापित कर लिया है, तो आपकी दृष्टि में इसे वैश्विक स्वास्थ्य शक्ति बनाने की दिशा में कौन से बड़े बदलाव हैं और कौन से पहल सबसे महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं?
सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू ऑल्सो फॉर टेकिंग अप दिस वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू। और इसका कारण यह है कि पिछले एक दशक में जिस तरह की सोच को लाया गया है स्वास्थ्य को, वो एकदम दर्शित करता है कि स्वास्थ्य को विकास का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया गया है। और इस दिशा में ये, और इसको कोविड के दौरान बहुत अच्छी तरीके से समझ आया सबको कि स्वास्थ्य और विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और इसलिए स्वास्थ्य में जो भी निवेश किया जाता है वो एक तरीके से हमारे विकास को अधिक गति देने के लिए तैयार है। और इस दिशा में 7-8 तरीके से क्षेत्रों में एक साथ उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। तो एक तरफ तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो चिकित्सा कर्मियों की और चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले, उसकी कमी को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो हमें आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है उसको इम्प्रूव किया गया है, जिससे कि मैं देश के हर क्षेत्र में स्वास्थ्य फैसिलिटीज को, हेल्थ फैसिलिटीज को बनाया जा सके और लोग उसका लाभ उठा सके। और तीसरा जो कंपोनेंट है कि जो दवाइयों के बारे में बात की जाती थी कि दवाई की कमी रहती है, उस कमी को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। और चौथा जो एक महत्वपूर्ण पिलर है इस तरफ, और वो है कि स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता को भी साथ साथ बहुत महत्व दिया जा रहा है। तो खाली नाम के लिए स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, उसमें गुणवत्तापूर्व स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए, यूनिवर्सल समग्र तरीके से हरेक के पास ये स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचनी चाहिए। और इसके अलावा एक पांचवा जो क्षेत्र है जिसमें काम किया जा रहा है, और वो ये है कि हम जैसे एक विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने उस पथ की तरफ जो बढ़ते हुए, हम अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी, बाहर के देशों के लोगों को भी स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें, जिसको हम हील बाय इंडिया कहते हैं, यानी कि भारत जो है दूसरों की स्वास्थ्य सेवाओं का उसकी समुचित देखभाल कर सके। और इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल था वैक्सीन मैत्री का, जो कोविड के दौरान हमने देखा कि हमारे बहुत सारे मित्र थे। और इस दिशा में जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री है, फार्मा का क्षेत्र है, और उसको भारत को एक फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की जो बात है, उसको खाली एक इंडस्ट्री के तौर पे ना देख करके मनुष्यता और ह्यूमैनिटी के लिए भी एक कंट्रीब्यूशन करने वाले के रूप में देखा जा रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक बहुत ही समग्र तरह, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हेल्थ क्षेत्र को जो उसमें नीति बनाई गई है और जो उसमें कार्यक्रम बनाए गए हैं, उसमें जो प्रोग्रेस हो रही है, जो विकास हो रहा है, उसको देख करके आप, अगर मैं इन सारी चीजों को देखता हूं, तब मेरी समझ में आता है कि हम किस दिशा की तरफ बढ़।
आपने लगभग पूरी रूपरेखा बता दी, अब हम एक एक करके एक बिंदु पर गौर करें। तो पहले बात करें कि जो सबके लिए स्वास्थ्य कवरेज है, उसकी दिशा में भारत की नीतियों और कार्यक्रमों से यहाँ के आम नागरिकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है?
इस दिशा में तो तीन चीजें हमें समझने की जरूरत है। एक जो बहुत ही, एक जिसको कहना चाहिए आमूल परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा हमारे देशवासियों के लिए, वो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इस समय लगभग 1,80,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। जिस तरीके से जनरल प्रैक्टिशनर अपने आसपास के मोहल्ले और गांव शहर का रहने वाला है उनकी सेवा करते हैं या देखभाल करते हैं, इसी सोच के साथ ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो ये देखा गया है कि रफली एक व्यक्ति को 2 से 3 किलोमीटर के अंदर एक आरोग्य मंदिर मिल जाता है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और ये एक बहुत बड़ी, और इसमें 12 तरह की सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रयोजन है, और कोशिश की जा रही है कि इनका जो परफॉर्मेंस है वो उसको उत्तरोत्तर उसकी विकास किया जाए। दूसरी तरफ जो बहुत इम्पोर्टेंट किया गया है कि जो सर्विसेज हैं, जिससे कि, और इससे तो आप समझ गए कि हर एक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए, चाहे वो हम अरुणाचल प्रदेश में हो, नागालैंड में हो, लद्दाख में हो, ये सर्विसेज सबके पास पहुंचने की है। और दूसरी तरफ जो चीज की गई है कि अब हमारे पास डिजिटलाइजेशन के द्वारा जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वहां पर टेली सर्विसेज को भी उपलब्ध किया जा रहा है, यानी कि अगर स्पेशलिस्ट की जरूरत है तो इन आरोग्य मंदिर के थ्रू आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या पीएससी सीएससी में या नजदीक के मेडिकल कॉलेज में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और इसके लिए एक प्रॉपर आईटी प्लेटफॉर्म ई संजीवनी करके बनाया गया है और टेली कंसल्टेशन करी जा सकती है। यानी कि एक तो इमरजेंसी के लिए अगर मेरे को कुछ बात करनी है एज ए स्वास्थ्यकर्मी अपने मरीज के बारे में, और दूसरा जो जिसका इलाज चल रहा है क्रॉनिक डिजीज का और उसके बारे में उसको फॉलो अप करना है, तो उसको अस्पताल तक, बड़े अस्पताल, मेडिकल कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, वहीं से उसको कंसल्टेशन या सलाह दी जा सकती है। तो ये एक तरीके से पूरी टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के घर तक पहुंचाने का बहुत बड़ा प्रयास किया गया है। दूसरी तरफ हम एक और उदाहरण जिसमें भारत सारी दुनिया में उसकी तारीफ की जाती है, और वो ये है कि हमारा टीकाकरण कार्यक्रम 2014 में खाली 63% बच्चों को पूरा टीका लगता था। आज स्थिति यह है कि 93-94% बच्चों को ये टीकाकरण है, टीके में संख्या में अब करीब 11-12 टीके मिलते हैं उनको, और केवल 1-2% बच्चे ऐसे हैं जिनको एक भी टीका नहीं मिला। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये एक उदाहरण भी है कि जब इच्छा शक्ति हो, राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और कार्यक्रम की इच्छा शक्ति हो, तो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना मुमकिन है, और ये किया जा रहा है।
आपने अभी उल्लेख किया कि देश में टीकाकरण में कितना विकास हुआ है, कितनी सफलता मिली है, और इसके साथ ये भी उल्लेखनीय है कि भारत की वैक्सीन निर्माण क्षमता काफी बढ़ गई है और वैश्विक आपूर्ति में उसकी भूमिका भी सचमुच उल्लेखनीय है। क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे?
सुबोध जी, हमारे श्रोताओं को जानकर बहुत अच्छा लगेगा, इस दुनिया में अगर 3 वैक्सीन की डोज दी जाती है उसमें से 2 वैक्सीन भारत में निर्मित होती है, यानी लगभग 62-63% जो वैक्सीन डोजेज हैं वो भारत में निर्मित है। और इसका कारण 2 है, एक तो हम उनकी गुणवत्ता है और दूसरे जो है उनकी कीमत है। और इस कीमत का अंदाजा इसी तरीके से लगाया जा सकता है कि कोविड के दौरान जो टीके हम लोगों को, भारत को, जनता को मिल रहे थे, वो भारत सरकार 100-150 रुपए का एक टीका लेती थी, लेकिन वही टीका सारी दुनिया में कहीं 2,000, 2,500, 3,000, यानी प्राइस डिफरेंस इतना जबरदस्त है। तो टीकाकरण के क्षेत्र में हम लोगों ने जो उपलब्धि प्राप्त करी है ये तो निर्माण से संबंधित है। अब मैं आपको अनुसंधान के क्षेत्र में भी बताना चाहूंगा कि कोविड के दौरान पहले ये होता था कि कोई नया टीका दुनिया में कहीं पे आए तो यहां तक आने में 10 से 20 साल लग जाते थे, यानी कि अगर 60 में कोई टीका आया तो भारत में उसको आते हुए 75 या 1980 तक टीका हमारे बच्चों को और हमारे लोगों को मिलता था। लेकिन अब ये हुआ है कोविड के दौरान कि दुनिया में टीका दिसंबर के पहले हफ्ते में यूएसए और यूरोप में शुरू हुआ और 4 हफ्ते के अंदर ही भारत के अंदर वो टीकाकरण आरंभ हो गया, और ये आगे के लिए कहानी बनाई गई। इस बीच में अनुसंधान पे इतना अच्छा निवेश किया गया और इतने स्ट्रैटेजिक तरीके से किया गया है कि अब हमारे पास अपना एमआरएनए वैक्सीन है जो दुनिया का सबसे बेहतरीन एमआरएनए वैक्सीन है, जो फाइजर और मॉडर्ना के वैक्सीन से बेहतर है। दुनिया का पहला डीएनए वैक्सीन जो है वो भारत में है, हमारे यहाँ नाक के द्वारा देने वाला वैक्सीन है। उसके अलावा जो यूजुअल वैक्सीन बनाने के तरीके हैं, चाहे जैसे कोवैक्सीन था और इसके अलावा बाकी टीके जो कार्बीवैक्स करके वैक्सीन जो प्रोटीन सब यूनिट के है या हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है ये तो है ही। और अब आपको जान के ये भी खुशी होगी कि भारत में जितने भी वैक्सीन हम अपने लोगों को देते हैं वो सब भारत में निर्मित है। और एक तरीके से कल अगर कोई नया महामारी आती है तो भारत उस सक्षम स्थिति में है कि हम 100 से 150 दिन के अंदर अपनी वैक्सीन बना करके भारतीयों के लिए तैयार कर देंगे। और ये किस तरीके से हुआ, एक तरफ तो इच्छा शक्ति, उच्चतम राजनीतिक इच्छा शक्ति, दूसरी तरफ जो टेक्निकल कैपेसिटी बनाई गई है पिछले 20-25 साल में, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना, तीसरा हमारे यहाँ सरकारी संस्थान और मैन्युफैक्चरर्स या प्राइवेट सेक्टर आपस में मिलकर के काम कर रहे हैं। इस वजह से आज हमारे पास 6 से 7 तरह के प्लेटफॉर्म्स या इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क है जिसपे कोई भी वैक्सीन बहुत तेजी से बनाई जा सकती है। तो वैक्सीन के क्षेत्र में हम ये कह गए कि हम दुनिया के लिए नए मानदंड तैयार कर रहे हैं और पैदा कर रहे हैं।
भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है आजकल, और इसके पीछे की क्या कहानी है, खासकर जेनेरिक दवाओं के संदर्भ में?
भारत में लगभग 10 से 12 हजार फार्मा कंपनियां हैं और हमारे यहाँ जो दवा का उत्पादन होता है उसकी लागत और उसके साथ साथ उसकी बनाने में जो कुल मिला के खर्चा होता है बाकी और जगह के मुकाबले, दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम रहता है। एक तो ये हो गया। जो ब्रांडेड दवाई है वो भारत में जिस कीमत पे मिलती हैं, अगर मैं उसका मिडल ईस्ट या यूरोप के किसी कंट्री से या अफ्रीका के किसी कंट्री से करूं तो बहुत कई गुना कम होता है। लेकिन एक क्षेत्र जिसमें भारत ने फिर अग्रणी अपना स्थान बनाया है और वो है जेनरिक दवाइयों में। और जेनरिक दवाइयों का सबसे पहला लाभ हम अपनी जनता के लिए खुद के लिए है। ये जन औषधि केंद्र बनाए गए, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है ये, और इसमें दवाई की कीमत, जेनरिक दवाइयां जो हैं ये गुणवत्तापूर्ण हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से बनाई जाती हैं और इसका कीमत जो है 50 से 90% दाम जो है वो जो मार्केट में ब्रांडेड दवाइयां उसके मुकाबले कम दाम पर मिलती। तो फॉर एग्जांपल मैं भी इन्हीं दवाइयों का इस्तेमाल करता हूं जब भी घर में जरूरत होती है। तो एक सिंपल ब्लड प्रेशर की दवाई जो ब्रांडेड अगर दवाई लेता हूं तो वो 112 रुपए की 10 गोलियां मिलती हैं। और वही जो है ये अगर मैं जन औषधि केंद्र से दवाई ली तो वो 10 गोली मेरे को 25 रुपए की मिली। यानी कि आप देख सकते हैं कि और ऐसी दवाइयां जिनको लगातार खाना होता है सारी उम्र, खास तौर पे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, बाकी मेंटल डिसऑर्डर्स है, तो उनके लिए तो ये एक मैं कहूंगा कि आशीर्वाद से कम नहीं है कि एक तरफ से गुणवत्ता पूर्वक जो निर्मित दवाइयां हैं वो उपलब्ध हैं। ये उन लोगों के लिए उपलब्ध है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपनी जेब से खर्चा कर सके और जिसको करना पड़ता है और वो दवाई मिल रही होती है। और आज करीब करीब 18,000 हमारे जन औषधि केंद्र हैं सारे देश में और जितने भी सरकारी बड़े संस्थान हैं, चाहे वो एम्स हैं, चाहे सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, सब जगह इन जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। और दूर दराज के क्षेत्र में भी जो शहरी क्षेत्र हैं कम से कम वहां पर हैं और कोशिश की जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन जन औषधि केंद्रों को खोला जाए। तो एक उपलब्धता हो गई और सबसे ज्यादा अफोर्डेबिलिटी का इशू है। और ये भी मैं आपको बताऊं पिछले 10 साल में एक होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, यानी हर एक कोई घर में बीमार हो जाए तो घर अपनी जेब से कितना पैसा कर? तो पहले अगर 100 रुपए खर्च होते थे कुल मिला के इलाज में तो एवरेज 60-65 रुपए 10 साल पहले जेब से खर्च करने पड़ते थे, आज वो 35 और 40 रुपए के बीच में आ गया। तो ये सारे के सारे जो पॉलिसीज बनी हैं और जो कार्यक्रम बने हैं उसकी वजह से हर एक व्यक्ति पर अपने इलाज का खर्च का जो वजन है, जो प्रेशर है, वो काफी कम हो गया और कोशिश की जा रही है कि इसको लगभग 10% तक लेकिन नीचे तक आया जाए।
श्रोताओं, जैसा कि अभी आपने सुना, नीति, तकनीक और नवाचार के समन्वय से भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में नई संभावनाओं का निर्माण कर रहा है। यदि यही गति और प्रतिबद्धता बनी रही तो आने वाले समय में भारत वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। डॉक्टर अरोड़ा, अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।
श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में।